Hari Jaya Radha. Radha Madhava Kunja Bihari. Gopijana Vallabha Girivaradari. Gopijana Vallabha Girivaradari. Yashodanandana Braja Janaranjana. Yashodanandana Braja Janaranjana. Yamuna Tira Vanachari. Yamuna Tira Vanachari. Radha Madhava Kunja Bihari. Gopijana Vallabha Girivaradari. Yashodanandana Braja Janaranjana. Yamuna Tira Vanachari. Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama, Rama, ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ರಾಧಾ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಪಾವನ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಕೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಕುಂಜ ಬಿಹಾರಿ ಕೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ವೃಂದಾವನ ಚಂದ್ರ ಕೀ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗೌರ್ ನಿತಾಯಿ ಕೀ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೀ ಗ್ರಂಥರಾಜ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕೀ ಓಂ ಅಜ್ಞಾನ ತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನ ಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುಃ ಉನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮನೋಭೀಷ್ಟಂ ಸ್ಥಾಪಿತಂ ಯೇನ ಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಕದಾ ಮಹ್ಯಂ ದದಾತಿ ಸ್ವಪದಾಂತಿಕಂ ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀಗುರೋ ಶ್ರೀಯುತಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀಗುರೂನ್ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ್ಚ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗ್ರಜಾತಂ ಸಹಗಣರಘುನಾಥಾನ್ವಿತಂ ತಂ ಸಜೀವಂ ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನಾಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣಚೈತನ್ಯದೇವಂ ಶ್ರೀರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣಪಾದಾನ್ ಸಹಗಣಲಲಿತಾ ಶ್ರೀವಿಶಾಖಾನ್ವಿತಾಂಶ್ಚ ನಮೋಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪೃಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೇ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನಿತಿ ನಾಮಿನೇ ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತೇ ದೇವೇ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೇ ನಿರ್ವಿಶೇಷಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶತಾರಿಣೇ ನಮೋ ಮಹಾವದನ್ಯಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರದಾಯತೆ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ನಾಮ್ನೇ ಗೌರತ್ವಿಷೇ ನಮಃ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧೋ ದೀನಬಂಧೋ ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾ ಕಾಂತ ರಾಧಾ ಕಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಾಂಗಿರಾಧೇ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವೃಷಭಾನುಸುತೆ ದೇವೀ ಪ್ರಣಮಾಮಿ ಹರಿ ಪ್ರಿಯೇ ವಾಂಚಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾಸಿಂಧುಭ್ಯ ಏವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರಭಕ್ತವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇ ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಶ್ವ ಭದ್ರೇಶು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯಾ ಭಗವತ್ಯುತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೇ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಠಿಕಿ ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ದೇವಕೀ ನಂದನಾಯ ಚ ನಂದಗೋಪಕುಮಾರಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡಿದ ಶ್ಲೋಕ ನಂಬರ್ ಆಜ್ ಹಮ ಭಾಗವತ್ ಕೆ ಪಾಂಚವೇ ಸ್ಕಂದ ಕೆ ಪಾಂಚವೇ ಸ್ಕಂದ ಕೆ ಪಾಂಚವಾ ಅಧ್ಯಾಯ ಹಾಂ 5.2.2 ಪ್ರೋಸ್ ಆರ್ಡರ್ ವರ್ಸ್ ಸಚ ಕದಾಚಿತ್ ಪಿತೃಲೋಕ ಕಾಮಸ್ स्वरवरवनिता क्रीडाचलद्रोण्यां भगवन्तं विश्वसृजां पतिम् आवृतपरिचर्योपकरण आत्मैकाग्र्येण तपस्व्याराध्यां बभूव। हिंदी में पढ़िए अनुवाद, यू रीड वर्ड बाय वर्ड। शब्दार्थ,
शब्दार्थ, सह वह च भी कदाचित एक बार पितृलोक पितृलोक की काम इच्छा करते हुए सुरवर श्रेष्ठ देवताओं में से वनिता स्त्री जाति आक्रीड़ा विहार स्थली अचल द्रोणयाम मंदराचल की एक घाटी में भगवंतम सर्वशक्तिमान भगवान ब्रह्मा को विश्व सृजाम जिन विभूतियों ने इस ब्रह्मांड की रचना की पतिम स्वामी को आभृत संग्रह करके परिचर्या उपकरण पूजा की सामग्री आत्मा मन का एक अच्छे न पूरे मनोयोग से तपस्वी तप करने वाला आराध्याम बहुव आराधना में लग गया। अनुवाद, एक बार महाराज अग्निध्र ने सुयोग पुत्र प्राप्त करने तथा पितृलोक का वासी बनने की कामना से भौतिक दृष्टि के स्वामी भगवान ब्रह्मा की आराधना की। वे मंदराचल की घाटी में गए जहां स्वर्गलोक की सुंदरियां विहार करने आती हैं। वहां उन्होंने वाटिका से फूल तथा अन्य आवश्यक सामग्री एकत्र की और फिर कठिन तप तथा उपासना में लग गए।
दोनों किया महाराज अग्निधर ने, एक है थोड़ा पूजा भी किया है, फूल इत्यादि इकट्ठा किया है भगवान की पूजा आराधना इत्यादि के लिए, थोड़ा तपस्या भी कर लिया है, आराधना भी किया है, थोड़ा तपस्या भी किया है, लेकिन साथ साथ ऐसे एक स्थान में गए हैं एक स्त्री ढूंढने के लिए विवाह के लिए, इसलिए ऐसे एक स्वर्ग में जिस स्थान में अप्सराएं विचरण करने के लिए आती हैं उस स्थान में जाकर बैठकर तपस्या में लगे, तो इससे पता चलता है कि इनके मति में कुछ ऐसी इच्छा थी कि ऐसे एक अच्छा एक संबंध जुड़ जाए किसी के साथ, विवाह करके हम सेटल होंगे, इस तरह की अपेक्षा के साथ ऐसे गए थे। तो ये बताया जाएगा आगे भी, आप देखेंगे। तो हर एक व्यक्ति अपने अपने अपेक्षा के अनुसार ऐसे स्थान में पहुंच ही जाता है, अपने अपेक्षाओं को इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए। इसका मतलब है ये मिश्रित भक्ति है जिसमें थोड़ा भक्ति भी करने की इच्छा है, साथ साथ थोड़ा पूजा भक्ति इत्यादि भी हो रहा है, साथ साथ कुछ व्यक्तिगत इच्छा भी है, भौतिक इच्छा है, ऐसे कुछ अप्सरा चाहिए, ऐसे विवाह करेंगे, दोनों को लेकर आए हैं उधर मंदरा हिल में, मंदरा पर्वत में। कौन कौन? अग्निध्र। कौन है अग्निधर? किसके पुत्र हैं? प्रियव्रत। तो इस श्लोक में एक महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब हमें मिलने वाला है जिसको मैंने शीर्षक में दिया था। शीर्षक क्या है? भक्तों के बच्चे भक्त क्यों नहीं बनते हैं, वैष्णवों के बच्चे भक्त क्यों नहीं बनते, ऐसे प्रश्न दिया था हमने। भाई से तो वैष्णवों के बच्चे वैष्णव ही बनते हैं, मैंने देखा है हमारे कांग्रीगेशन में कितने अच्छे अच्छे वैष्णव परिवार में जन्मे बच्चे। इधर हम देखते हैं भक्ति वेदांत विद्याश्रम, इधर लगभग 50 से 60 बच्चे हैं वे विद्यार्थी जो हमारे कांग्रीगेशन वैष्णवों के ही बच्चे हैं, आते हैं सब प्रशिक्षण लेते हैं, खुद उन्होंने चुना है इस तरह का प्रशिक्षा, हर सुबह आ जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। इसी तरह से छोटी बच्चियों का एक कार्यक्रम अच्युत केशव प्रभु उनके वाइफ चला रहे हैं, उसमें भी 10-20 बच्चे आ जाते हैं। अनुपम गोपिका माता जी और एक बच्चियों के लिए बड़ी बच्चियों के लिए एक कार्यक्रम चला रही है, उसमें 25-30 बच्चियां आकर प्रशिक्षण ले रही है। और इस तरह हमारे BMS में हेमांगी गोपी माता जी, तो वो लोग भी ऐसे प्रशिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, तो अनेक कांग्रेशन के बच्चे ही अच्छे महान भक्त बनते जा रहे हैं, अच्छे अच्छे भक्ति में भी बढ़ रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। तो हमने शीर्षक ऐसे क्यों दिया, किसी को प्रश्न उठ सकता है ना, वैष्णव के बच्चे भक्त क्यों नहीं बनते। वैसा देखा जाता है कि वैष्णव के बच्चे वैष्णव ही बनते हैं, लेकिन कभी कभी देखा जाता है वैष्णव के परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी वो बच्चों में एक भक्ति का रेखा दिखाई नहीं देता, इच्छा दिखाई नहीं देता, वो भौतिक पदार्थों में लग जाते हैं, भौतिक वासनाओं के पीछे पड़ जाते हैं। तो इसका कारण क्या है, ये इसका जवाब आज आपको पता चल जाएगा इस तात्पर्य से प्रभुपाद जी से। पढ़िए आगे।
तात्पर्य, राजा पितृलोक काम अर्थात पितृलोक में जाने का इच्छुक हो गया। पितृलोक का उल्लेख भगवत गीता में हुआ है, यान्ति देवव्रता देवान पितृयान्ति पितृव्रता। इस लोक में जाने के लिए उत्तम पुत्र होने चाहिए जो भगवान विष्णु को भेंट चढ़ाने के पश्चात जो कुछ बचे उसे अपने पितरों को चढ़ाए। श्राद्ध संस्कार का उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है, जिससे उनके प्रसन्न होने के बाद जो प्रसाद बचे उसे अपने पितरों को दिया जा सके जिससे वे प्रसन्न हों। पितृलोक के वासी प्रायः कर्मकांडी होते हैं और अपने पुण्य कर्मों के कारण वहां भेजे गए होते हैं। वे वहां तब तक रहते हैं जब तक उनके वंशज उन्हें विष्णु प्रसाद भेंट करते रहते हैं, किंतु पितृलोक के प्रत्येक प्राणी को पुण्य कर्मों के फलों से क्षय होने पर इस पृथ्वी में वापस आना पड़ता है, जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि की गई है, छीने पुण्य मरते लोक विशंति। जो पुरुष पुण्य कर्म करते हैं वे स्वर्ग भेजे जाते हैं, किंतु जब उनके पुण्य कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है तो वे पुनः पृथ्वी पर वापस भेज दिए जाते हैं। चूंकि महाराज प्रियव्रत परम भक्त थे, अतः उनसे ऐसा पुत्र किस प्रकार उत्पन्न हुआ होगा जो पितृलोक भेजे जाने का कामी हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पितृन्यान्ते पितृव्रता। जो व्यक्ति पितृलोक जाना चाहते हैं उन्हें वहां भेज दिया जाता है। उसी प्रकार यान्ति मद्या जिनो अपिमाम। जो पुरुष वैकुंठ लोक जाना चाहते हैं वे भी वहां जा सकते हैं। चूंकि महाराज अग्निधर एक वैष्णव पुत्र थे, अतः उन्होंने वैकुंठ लोक जाने की कामना की होगी, तो फिर वे पितृलोक में क्यों जाना चाहते थे?
हाँ, ये प्रश्न है। हाँ? तो पिता थे महान वैष्णव, कौन? प्रियव्रत। बेटे थे अग्निधर, वो स्वर्गलोक की कामना रखा। क्यों ये प्रश्न उठ रहा है इधर? हाँ? तो ये प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर माता पिता की इच्छा अगर आध्यात्मिक हो तो बच्चे को भी वो आध्यात्मिक इच्छा ही आना चाहिए। उनके कांदन में जन्मा है, उनको ऐसे क्यों नहीं हुआ है? तो ये प्रश्न हम भागवत के अलग अलग प्रसंगों में से के द्वारा हम समझ सकते हैं। आप देखेंगे अंग महाराज करके एक राजा था, तो उसका बेटा जो था वेणा, उनको तो पुत्र भाग्य है ही नहीं था, उनके तकदीर में नहीं था। लेकिन एक बार देवताओं के लिए पूजा आराधना किया, देवता लोग आकाश मार्ग में आए, लेकिन यज्ञ के जो हविषान्न है उसको स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थे। वो ऐसे ऐसे दूर से देखकर आए लेकिन स्वीकार नहीं, निकल गए। तो उनको बड़ा शंका हुआ। हा? तो उन्होंने ब्राह्मणों के पास अनुमति लेकर अपने मौन व्रत को तोड़कर ब्राह्मणों को पूछा कि मैंने कुछ पाप कर दिया क्या, क्यों मेरे यज्ञ में आ नहीं रहे हैं देवता लोग, ऐसे देख देख कर निकल रहे हैं, तो थोड़ा बता दीजिए। तो वो ब्राह्मणों ने बोला कि उनके ज्योतिष इत्यादि देखकर, उनके कुंडली इत्यादि देखकर बताया उन्होंने पूर्व जन्म में आपने कुछ पाप की है, लेकिन इस जन्म में शरीर से भी मन से भी आपने एक भी पाप नहीं किया, एकदम सरल और शुद्ध जीवन जिया है आपने, लेकिन पूर्व जन्म के पाप की वजह से आपको पुत्र भाग्य नहीं है इस जन्म में, ऐसे बोले। इसलिए देवता लोग सोच रहे हैं कि अगर आपके यज्ञ को स्वीकारेंगे तो उनको पुत्र देना पड़ेगा आपको, लेकिन आपके अकाउंट में नहीं है, हिसाब में नहीं है आपका, तो कैसे दे पाएंगे, इसलिए वो लोग स्वीकार ही नहीं रहे हैं, ऐसे बोला उन्होंने। तब अंग महाराज ने बोला, ऐसा है क्या? तो उसका मतलब क्या है, मेरे पूरा जीवन में कोई पुत्र नहीं मिलेगा मुझे? तो वो बोले, ये एक उपाय है, इन देवताओं को यज्ञ चढ़ाने के बदले अगर आप परम भगवान वासुदेव उनकी यज्ञ करेंगे तो आपको पुत्र भाग्य प्राप्त हो जाएगा। तो उन्होंने बोला, ये तो पहले आप लोग आपको बोलना था, ठीक अभी कर दीजिए, भगवान वासुदेव के लिए करके मुझे एक पुत्र दे दीजिए। तो इसका इस तरह उनकी इच्छा एकदम एक पुत्र प्राप्ति करने में था ऐसे। तो ब्राह्मणों ने सोचा कि भगवान वासुदेव पुत्र दे ही देंगे अकाउंट में ना होने के बावजूद भी, लेकिन वो पुत्र होने से इतना तकलीफ होगा, आपको पुत्र ना होने से जितना होता है उतना ही तकलीफ होगा हा? तो इसलिए ऐसे पुत्र मिला, ऐसे पुत्र मिला उनको, एक वेणा करके वो सब बच्चों को पकड़कर समुद्र में फेंक देता था, वो मारता था, पिटाई करता था। सब लोग आकर शिकायत किया, पिताजी बोलने के बावजूद भी सुधरा नहीं बेटा, बार बार उसको सुधारने के लिए प्रयत्न किया लेकिन सुधरा ही नहीं, हताश हो गए। तो तब उन्होंने बोला, इस दुनिया में अगर किसी को पुत्र ही नहीं हो वो अभागी है, किसी को पुत्र हो तो भाग्यशाली है, लेकिन अगर कोई अच्छा पुत्र हो किसी का, कोई भी मानेगा कि मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मुझे अच्छा पुत्र मिला है, लेकिन अच्छा पुत्र होने के कारण कोई आसक्त हो जाएगा उस पुत्र से और उस दुनिया में हटक जाएगा, भाव बंधन में पड़ जाएगा वो। इसके विरुद्ध अगर किसी को पुत्र हो लेकिन बड़ा बदमाश हो, अगर वो अपने पिता के हृदय में अनासक्ति वैराग्य इत्यादि को पैदा करता हो, जिसके कारण पिताजी भगवान की श्री चरण में आश्रय लेने के लिए भाग जाते हैं, तो ऐसे पुत्र भी अच्छा ही है, ऐसे बोला उसने। इसलिए वो पुत्र के द्वारा अनासक्ति पैदा हुआ, अपने राज्य घरवार सब छोड़कर भाग गया, वो शुद्ध भक्ति में लग गया, वानप्रस्थ से लेकर भगवत धाम लौट गया वो अंग महाराज। तो इनसे, इनके जीवन में से हमारे भक्तों को क्या सीखना चाहिए, अगर किसी को पुत्र ही नहीं हुआ हो, 5 साल 10 साल 20 साल बीत गया पुत्र नहीं हुआ हो, तो उनको स्वीकारना चाहिए कि वह भगवान की ईश्वर की इच्छा है। अगर कोई ऐसे बच्चा होता जो हमारे जैसे कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो भूत पिशाच जैसे आकर माँ बाप को बहुत सताते हैं, वो भक्ति में लगने नहीं देते हैं, ठीक है भगवान ने ये ऐसे बच्चा दिया ही नहीं, तो हम ही भगवान के बच्चे बन जाएंगे बस, और भक्ति करके हम लौट जाएंगे, ऐसा करना चाहिए। अगर किसी को बच्चा हुआ माता पिता के प्रशिक्षण के बावजूद भी वो सुधरता नहीं, तो हमें सोचना चाहिए कि शुद्धिकरण के लिए भगवान ने दिया है ये बच्चा, क्योंकि बच्चा अलग संस्कारों को लेकर आया है पूर्व जन्म से। कभी कभी शिव जी भी पार्वती के साथ जब नंदी के ऊपर बैठकर प्रवास करते हैं, शाम के समय देखते हैं कि अगर कोई पति पत्नी संभोग करते हैं दिन में, जो करना नहीं चाहिए वैदिक विधि विधान के अनुसार, तो एक भूत पिशाच को छोड़ देते हैं उनके योनि में, तो भूत प्रेत को बच्चे का शरीर मिलता है उस घर में। बच्चा बड़ा होने के बाद पता चलता है माँ बाप को, अरे ये भूत प्रेत जैसे सताता है हमको, भूत ही है वो, ऐसे आया है वो, तो माँ बाप को भी चिल्लाते हैं कि हमारा बेटा इतना हमको सता रहा है, क्योंकि उन्होंने गलत संभोग किया, गलत समय में मुहूर्त ठीक नहीं था, जिसके कारण ऐसे बच्चे आकर माँ बाप को सताते हैं, वो भी एक कारण है बुरे बच्चे मिलने का। हर एक माता पिता इच्छा करते हैं कि मेरे बच्चे अच्छा अच्छा श्लोक बोले, अच्छा अच्छा गाए, अच्छा अच्छा भक्तिमान बने, बुद्धिमान बने, यशस्वी बने, धनी बने, सब माता पिता इच्छा करते ही हैं। लेकिन अगर उन्होंने इसे कुकर्म किया हो, संध्या काल में अगर संभोग किया हो गलत समय में, तो उनको इसे भूत पिशाच उनको बेटे के रूप में मिलता है। तो अगर पहले मैंने बोला बच्चे ही मिला ही नहीं, तो ईश्वर की इच्छा मानकर भक्ति में लग जाना चाहिए। अगर ऐसे कुछ किया हुआ कुकर्म के कारण बच्चे हो गए ऐसे, अभी क्या किया जाए, उनको छोड़ नहीं सकते हैं, बड़ा करना माँ बाप का ही कर्तव्य होता है। तो अपाना कर्म बुंजाए शमाना कही आलोचना, तो ना मेरा कर्म के कारण ही ये ऐसे पैदा हुए हैं, क्या किया जाए, मेरे मति ठीक नहीं था, हम गलत मुहूर्त में हमने संभव किया, तो ये समझ सकते हैं। जैसे सृष्टि के शुरुआत में शिवजी जब ब्रह्मा के भ्रगुटी से निकले, तब ब्रह्मा जी ने उनको एक प्रोजेक्ट दिया था कि मुझे वंशवृत्ति में मदद करो मुझे। शिवजी ने बोला क्यों नहीं, हम जरूर करेंगे। तो इतने बच्चे ऐसे पैदा किया उन्होंने, वो क्रूर थे, जोर जोर से चिल्ला रहे थे, वो सारे दुनिया को नाश करने के काम में लग रहे थे। तब ब्रह्मा जी डर गए, बोले कि अरे आप लोग क्या करना जा रहे हो, मैं पैदा कर रहा हूँ बच्चों को और तुम मार रहे हो उनको, पूरा खत्म कर दोगे सारे दुनिया के दुनिया को ही आप, ये संहार का समय नहीं है, ये सृष्टि का समय है। अरे संहार आप लोगों के पास मालूम है मुझे कि आप संहार का शक्ति है, लेकिन उसका प्रयोग इधर मत करो अभी। तुरंत उन्होंने शिव जी को बोला, सब भूतगणों को साथ में लेके जाओ, जंगल में पहुंच जाओ, उधर जाकर बैठकर तपस्या करो, जब मैं बुलाऊंगा तब आओ। तो शिव जी मान लिया, उधर जाकर तपस्या की मुद्रा में बैठ गए जंगल में जाकर। तो ये लीला से हम क्या समझ सकते हैं, तो जो शिव जी ने जो ऐसे भूतगणों को बनाया था उन शुरुआत में, इस तरह हम भी कभी कभी हमारे प्रचार काम में अनेक नवसिख्या लोगों को लेके आते हैं। अगर वो लोग सही ढंग से प्रशिक्षण नहीं लेते हैं तो भूत प्रेत जैसे ही वो लोग बहुत तंग करेंगे, खुद को भी तकलीफ, दूसरों को भी तकलीफ देंगे, वो ऐसे लोग होंगे। इसलिए हम संख्या को ही नहीं बढ़ाना चाहिए, लेकिन जिनको लाया है उनको प्रशिक्षण देना चाहिए। इस तरह माँ बाप कभी कभी ऐसे हो जाता है कि बच्चे को पैदा कर देते हैं लेकिन उनको समय नहीं दे पाते हैं, प्रशिक्षण नहीं देते हैं भक्ति मार्ग में, क्योंकि खुद ही एक आदर्श उदाहरण नहीं प्रस्तुत किया है। इसके कारण बच्चे भी बिगड़ जाते हैं, ऐसे ये भी कारण होता है बच्चे बिगड़ने का। तो इसलिए हरेक माँ बाप को ये कर्तव्य पड़ता है कि जैसे लीड फ्रॉम द फ्रंट, इसका मतलब क्या है, जैसे इंजन जो होता है ट्रेन में, तो इंजन शुरुआत में होता है अंत में होता है, कुछ कुछ ट्रेन गाड़ी में अंत में भी होता है, लेकिन शुरुआत में भी एक इंजन जरूर चाहिए, नहीं तो कौन देखेगा क्या क्या आ रहा है मार्ग में, है कि नहीं। तो इंजन पहले होता है उसके बाद बोगीज होते हैं। इस तरह जो भी हम चाहते हैं हमारे बच्चों से, जो अपेक्षा हम करते हैं, उसका आदर्श उदाहरण किसको दिखाना चाहिए, माँ बाप को दिखाना चाहिए, उसके बाद बच्चे पीछे आएंगे। जैसे प्रभुपाद के अनेक शिष्य आप देखेंगे, वो प्रभुपाद जी को फॉलो कर रहे हैं बहुत पक्के 30-40-50 साल से, और अपने ही अंडर में जो बच्चा शिष्य हैं उनको एक आदर्श उदाहरण भी प्रस्तुत कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, बी आइडियल फॉलोअर एंड ऑल्सो लीड फ्रॉम द फ्रंट, दोनों चाहिए हमको। हमारे जो आचार्य हैं, फाउंडर आचार्य प्रभुपाद जी, आज उनके अमेरिका में पहुंच गए थे बॉस्टन हार्बर में आज प्रभुपाद जी हैं, तो उनकी वो खुद भी अपने गुरु के कैसे बड़े अनुयायी थे वो, हाँ आप देख सकते हैं बक्सानंद ठाकुर के आदेश का पालन किया उन्होंने सही ढंग से। अभी उनके शिष्य जो हैं वो उनको पालन कर रहे हैं और अपने शिष्यों को वो एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए माँ बाप का भी यही कर्तव्य है, वो गुरु के पदचिन्हों में दिए हुए मार्ग में चलना चाहिए माता पिता को, और बच्चों के लिए एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। तो ये करने से बच्चे उनके उदाहरण को पकड़ सकते हैं आसानी से। और लेकिन अगर माँ बाप भक्ति मार्ग में आकर अच्छी तरह भक्ति भी कर रहे हो, लेकिन बच्चा उनका आदर्श उदाहरण को पकड़ नहीं रहा है, उसका कारण क्या है, यह भी हो सकता है। अभी अंग महाराज का बोला मैंने, वो शुद्ध भक्त था खुद भी, लेकिन बेटा उनकी बात नहीं माना, क्योंकि भगवान ने उनको ऐसे बेटे दिया, उनका शुद्धिकरण करके भगवतधाम लौटाने के लिए आयोजन कर दिया भगवान ने ऐसे अंग महाराज को। इसलिए मेरे गुरु महाराज एक परिवार से मिले, वो माँ बाप रो रहे थे कि हमारा बेटा भक्ति में नहीं आ रहा है, क्या किया जाए। तो महाराज बोले, देखो आप जो करना है आप कर रहे हो, आप सुबह उठ रहे हो, मंगल आरती कर रहे हो। तो वो लोग बोले, प्रभुपाद जी, महाराज जी, प्रभुपाद जब अभय था, छोटा बच्चा था, उनके पिताजी ने आरती उतारा तो उसको देखकर अभय और भवतारिणी उठ गए, दोनों नहा धोकर आकर पिताजी के साथ आरती में भाग लेते थे। तो अभी हम घर में सुबह उठकर माला करते हैं, आरती करते हैं, बच्चे सुनते नहीं हैं, बच्चे देखने के बाद भी सो रहे हैं, क्या किया जाए। महाराज बोले कि आप जो सही चीज करना आप कर रहे हो, तो आपका कर्तव्य को आपने निभाया है। अगर वो अपने अपने कर्मों को लेकर आए हैं, वो आपको सुन नहीं रहे हैं, तो आप छोड़ दो, बस आपके अपने कर्तव्य को निभाओ। बी ए गुड एग्जाम्पल एंड इफ दे डोंट फॉलो इट इज देयर प्रॉब्लम, इट्स नॉट योर प्रॉब्लम, ऐसे बोले महाराज जी। और आप इतना टेंशन मत लो, आप अपने आदर्श उदाहरण को पालन पालन करो, वो बोले ऐसे। और वो बोले कि अंततोगत्वा हर एक व्यक्ति को भगवान को हिसाब किताब देना पड़ेगा मृत्यु के समय, है कि नहीं, कोई बच नहीं सकता। जैसे हम अस्पताल में बैठे हैं सब लोग, मरीज लोग बाहर, तो अंदर बैठा है कौन, डॉक्टर। तो एक एक करके हम अंदर जाते हैं, हम सब लोगों का इतिहास किसके पास है, हाँ डॉक्टर के पास है, सब है, किसका क्या व्याधि है, कितना टीक हुआ है, कितना दवाई लिया है, सही ढंग से ले रहा है कि नहीं। तो इस तरह हमारे गुरु जी हैं, भगवान है, वो देख लेंगे, लेकिन हमारी ओर से हमें एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। तो प्रियव्रत तो आदर्श उदाहरण था, शुद्ध भक्त ही था, मंदर पर्वत में जाकर नारद मुनि की आधीनता में रहकर बहुत भक्त अच्छी तरीके से भक्ति के हम लोग जानते हैं। उनको तो मंदर पर्वत छोड़कर आने की मन ही नहीं था उनको, हाँ फिर भी ब्रह्मा जी खुद आकर स्वयं मुनि के साथ आकर उनको उपदेश देकर नारद मुनि भी सहमत हुए। उसके बाद लेके गए वो लोग प्रियव्रत को राजा बनाने के लिए। अभी राजा बनने के बाद अगर उसने पुत्र प्राप्त हुआ उसको, तो पुत्र जैसे बोलते हैं ना, यथा राजा तथा प्रजा, इसी तरह जैसे पिता वैसे बेटा, ऐसे होना चाहिए है? क्यों नहीं हुआ? प्रियव्रत सोच रहा है भगवत धाम लौटने के लिए, और उनका बेटा सोच रहा है स्वर्ग में जाकर भोगने के लिए। कारण क्या है, अभी जवाब देने वाले हैं, सुनिए।
इसके उत्तर में भागवत के एक टीकाकार गोस्वामी गिरिधर की टिप्पणी है कि अग्निधर उस समय उत्पन्न हुए थे जब महाराज प्रियव्रत अत्यंत कामसक्त थे। इसे तथ्य के रूप में ग्रहण किया जा सकता है, क्योंकि गर्भावस्था के समय जैसी मनोवृत्ति होती है उसी के अनुकूल पुत्र उत्पन्न होते हैं। अतः वैदिक प्रणाली के अनुसार पुत्रोत्पत्ति के पूर्व गर्भाधान संस्कार किया जाता है। इस संस्कार से पिता की मनोवृत्ति ऐसी हो जाती है कि जब वह अपनी पत्नी के गर्भ में वीर्य स्थापित करता है तो उससे ऐसा पुत्र उत्पन्न होता है जिसका मन भक्ति से ओतप्रोत हो। किंतु संप्रति ऐसा गर्भाधान संस्कार नहीं है, अतः अब जब पुरुषों में काम वासना रहती है तभी संतान उत्पन्न होती है। विशेष रूप से इस कलयुग में कोई गर्भाधान संस्कार नहीं रह गया, प्रत्येक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ कुत्तों तथा बिल्लियों जैसा संभोग करता है। अतः वैदिक आदेशों के अनुसार इस युग के सभी व्यक्ति प्रायः शूद्र कोटि के हैं।
तो इधर बताते हैं एक आचार्य के टीका से प्रपंच बताते हैं कि प्रियव्रत के एक धर्म पत्नी थी बहिष्मती नाम का। जब उनका कन्यादान हुआ, विवाह हुआ प्रियव्रत का, जब वो लोग अग्निवलम कर रहे थे तभी देवता लोग भी आश्चर्यचकित हुए प्रियव्रत के विवाह देखकर, क्योंकि वो उनकी पत्नी जो थी बहुत खूबसूरती थी वो, हाँ तो वो ऐसे अग्निवलम करते समय अग्नि भी आश्चर्यचकित हो गया उसकी खूबसूरती देखकर, ऐसे बताया गया है। अग्निदेव भी आश्चर्यचकित हो गए उसको देखकर, हाँ मोहित हो गया, ऐसे बताया गया है। बहुत खूबसूरत थी, तो शास्त्र बताते हैं रूपवती बार्या शत्रु। तो अगर कोई पत्नी, किसी का पत्नी बहुत रूपवती हो, वो रूपवती के होने के कारण वो मोहित मोहग्रस्त होकर पति कभी कभी अपने धार्मिक कार्यक्रम में बहुत ढीला पड़ जाता है। विवाह के पहले अगर कोई बहुत गंभीर भक्त था, लेकिन उसको एक रूपवती धर्मपत्नी मिली, तो वो भोग विलास में पड़ जाता है और भगवान को भूल जाता है। प्रियव्रत ऐसा नहीं था, क्योंकि विवाह होने के बावजूद भी उन्होंने वो धर्मपरायण रहा, भगवान के ब्रह्मा जी के इच्छा अनुसार सब अपने कर्तव्यों को निभाया। लेकिन खास इधर बताया जा रहा है कि संभोग के समय तो तैयारी नहीं था गर्भाधान ठीक तरह से, जिसके कारण उनके मति में काम जो था उसी के कारण बच्चे में भी ऐसे वासनाएं उत्पन्न हुई, ऐसे बोलते हैं। तो पुरुष और स्त्री दोनों जब साथ में आते हैं बच्चे पैदा करने के लिए, उनकी साइकोलॉजी जो है वो भी बच्चों में जाता है। जैसे प्रपंच बोलते हैं कि बेटी जो होती है उनको पिताजी का गुण आते हैं उसमें, और बेटा जो है उनको माता के गुण आते हैं बेटे में, ऐसे बताया जा रहा है, शास्त्र में बताया गया। उदाहरण दिया जाता है एक सुनीता करके एक स्त्री थी जो मृत्यु के बेटी थी वो, हाँ सुनीता, तो सुनीता का पुत्र था वेणा, हाँ इसलिए वेण में पिताजी का गुण नहीं आया, किसका आया गुण, माता का गुण आया सुनीता का, क्योंकि सुनीता मृत्यु की बेटी थी, तो ये वेण उनका बेटा था इसके कारण उनका गुण आया उनमें, ऐसे बताया गया। तो इसलिए माता पिता दोनों के जीवन में वो किस तरह का वो आध्यात्मिक कार्यक्रमों का अभ्यास करते हैं, ऐसे करते 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 जब बच्चे पैदा करने का समय आता है तब गर्भाधान करना चाहिए। कभी कभी आजकल देखा जाता है कुछ कुछ भक्त लोग उनका आध्यात्मिक कार्यक्रम थोड़ा ढीला ही है, सुबह माला नहीं होता है, प्रभुपाद की किताबें पढ़ाया नहीं होता है, और मंदिर में रेगुलर नियमित रूप से नहीं आ पाते हैं और कार्यक्रम में भाग नहीं लेते हैं, गंभीर नहीं है भक्ति में, ज्यादा भौतिक जीवन में है, लेकिन उनको इच्छा होता है हमें ऐसे बच्चा होना चाहिए, आचार्य जैसे बच्चे चाहिए हमको, प्रभुपाद जैसे एक बच्चा चाहिए हमको जो सारे दुनिया को नचाएगा, ऐसी इच्छा करते हैं वो लोग। तो वो लोग क्या करते हैं, इधर उधर भाग दौड़ करके गर्भाधान के बारे में सीखना चाहते हैं वो है? हमें ऐसे गर्भाधान करेंगे हम, 50 माला क्या, हम 100 माला भी कर लेंगे है? तो ऐसे वो लोग ज्यादा माला भी करते हैं, इसका में ऐसे सिस्टम है कि गर्भाधान के लिए 50 माला पति 50 माला पत्नी दोनों करना चाहिए, और दोनों माला करने के बाद मिलकर तो उनका मति एकदम पवित्र होगा, उसमें जब मिलते हैं तब एक शक्तिशाली बच्चा आध्यात्मिक शक्ति से भरा हुआ ऐसे बच्चा पैदा होगा, ऐसे बताया गया। तो लोग कभी कभी सोचते हैं कि हम आध्यात्मिक जीवन में कभी भी हम ढीला पड़ सकते हैं, लेकिन गर्भाधान के समय हम सीरियस होंगे तो बच्चा हो जाए, ऐसे कुछ लोगों का कल्पना है। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमें माता पिता जितना गंभीरता से अभ्यास करते हैं उसको देखकर बच्चों के ऊपर भी असर पड़ता है। गर्भाधान तो कर सकते हैं लेकिन गर्भाधान को छोड़कर भी व्यावहारिक जीवन में दोनों अगर भक्ति में गंभीर रहेंगे उसका असर भी पड़ेगा। इसलिए मैं आपको एक छोटा स्लाइड शो दिखाऊंगा आपको, उसको देखकर आपको पता चलेगा। देखिए हरेक जीव को पहले सर्वप्रथम स्पिरिचुअल केयर आध्यात्मिक पोषण की जरूरत है। तो जो भक्ति लता जो है अगर उसको बड़ा ना हो उसके लिए पहला क्या करना होता है, जिस तरह एक बीज बो दिया आपने मिट्टी में तो उसको पानी देना होता है, पानी का सिंचन करने से क्या होता है वो धीरे धीरे अंकुरित होता है, विकसित होता है, है ना। इसी तरह हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए पोषणदायक चीज क्या है, श्रवणम और कीर्तनम। और कविराज गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि अगर हम रोज प्रभुपाद की किताबों को पढ़कर श्रवण नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो धीरे धीरे हम आध्यात्मिक जीवन में कमजोर पड़ जाएंगे हम। इसलिए माता पिता जो होते हैं उनको पहले श्रवणम अच्छा होना चाहिए। तो इससे जो पौधा बढ़ता है उसको पोषण मिलता है, पानी ही उसके लिए पोषण है, पानी के बिना वो कैसे बढ़ेगा वो। अगर हम किताबों को शोकेस में रख दिया, पढ़ते नहीं है, तो आध्यात्मिक जीवन में हम कमजोर पड़ जाते हैं, और बच्चे जो पैदा होते हैं वो लोग भी कमजोर के बेचा बच्चा कमजोरी बनता है वो भी ऐसे है। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर कोई महान वैष्णव हो हमें देखना चाहिए कितने महान वैष्णवों को बनाया है उन्होंने, वो देखना चाहिए हमको, प्रभुपाद जी बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी के समय में 10,000 लोगों को प्रभुपाद ने जोड़ा इस संस्था में, उसमें से 5,000 लोगों को दीक्षा दिया, लेकिन उन 5,000 लोगों में जो दीक्षा दे दिया प्रभुपाद जी ने, लगभग 500 लोग 1,000 लोग अभी सारे दुनिया को नचा रहे हैं वो लोग है? पूरा भक्ति मार्ग में है, और बाकी लोग भी अभ्यास कर रहे हैं, शायद हो सकता है कि उतना बड़े प्रभाव नहीं डाल पाएंगे दूसरों में, लेकिन खुद उनको रुचि है, प्रैक्टिस कर रहे हैं वो। हो सकता है कुछ लोग छोड़कर चले भी गए, ऐसे भी लोग हैं। जैसे एक बड़ा आम का पेड़ हो, उस आम के पेड़ में कुछ आम कच्चे आम होते हैं, कुछ आम पक्के आम होते हैं, और कुछ आम गिर भी जाते हैं नीचे, वो सुनते नहीं, वो पेड़ के साथ जुड़कर नहीं रहना चाहते। वो आम देखेंगे एक थोड़ा आधा कच्चा है आधा पक्का है और नीचे गिर पड़ा है वो, ऐसे भी है। लेकिन आप देखेंगे आम का पेड़ में अच्छा आम भी मिलता है ना, अच्छा पक्का आम जब खाकर सब लोगों को आनंद प्राप्त होता है। इसी तरह आप देखेंगे इस इतने बड़े संस्था करके प्रभुपाद जी इतने हजारों लोगों को जोड़ा उन्होंने, अभी उनके शिष्य भी 40-50 साल से अभ्यास करके वो लोग उसको विकसित कर रहे हैं अभी। तो प्रभुपाद जी ने कैसे अपने शिष्यों को पोषण दिया, इसलिए उन्होंने सबसे ज्यादा किताब लिखा, उन्होंने उन किताबों के द्वारा पोषण दिया। जैसे इधर देख रहे हैं आप पिक्चर में, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो, प्रभुपाद जी ज्ञान दे रहे हैं तो शिष्य सुन रहा, श्रवण करके उसके हृदय में परमात्मा का अनुभूति होता है, उसको भगवान स्फुरित होते हैं उनके हृदय में। तो इधर ही इस रहस्य है, हम घर में बच्चों को बड़ा करते समय उनको श्रवण होना चाहिए, कुछ कृष्ण कथा का श्रवण सुनना। आप लोग जानते हैं दो उदाहरण है शास्त्र में, एक है भौतिक उदाहरण है, एक आध्यात्मिक उदाहरण है। एक भौतिक उदाहरण है, कृष्ण ने सुभद्रा को ये चक्रव्यूह के बारे में बताया है ना, तो बताते समय अभिमन्यु, ये करेक्ट है ना, अभिमन्यु उत्तरा के इसमें है, अभिमन्यु जो था, अभिमन्यु गर्भ में होते समय सुना उसने है? लेकिन इसलिए बाहर आने के बाद उसको उसका जानकारी था, सुभद्रा के बेटा बनाना अभिमन्यु, तो अभिमन्यु के पास चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश कैसे करना वो मालूम था, लेकिन बाहर कैसे निकलना मालूम नहीं था। कारण क्या है, क्योंकि सुभद्रा कृष्ण जो बता रहे थे चक्रव्यूह के बारे में, सुनते सुनते सो गई वो है? जब तक सोया नहीं था तब तक वो सुन पाया बच्चा, उसके आगे नहीं सुना वो है ना। तो इसका मतलब है माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है जो श्रवण करती है वो, उसका असर बच्चे के ऊपर बहुत गहराई से पड़ता है। और एक उदाहरण है जो प्रहलाद अपने माँ के गर्भ में जब थे, उनको एक महाभागवत भक्त नारद मुनि की सदुपदेश मिला उनको, उस उपदेश को गर्भ में बैठ कर सुन। देखिए प्रहलाद ने नारद मुनि को देखा भी नहीं, वो तो माँ के योनि में था ना, कैसे देख पाएगा वो। इसलिए गुरु को देखना उतना आवश्यक नहीं है, लेकिन सुनना चाहिए गुरु को। सुनना ही नहीं है, उसको अपने जीवन में लागू करना चाहिए। और वो उन्होंने किया सही ढंग से, लागू भी किया, कृतज्ञ भी हुए अपने गुरु को, महाभागवत बने खुद भी। इसका मतलब है जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है तब उनको अच्छा भगवान के कीर्तन, भगवान के प्रवचन इत्यादि सुनकर बच्चे को मार्गदर्शन मिलता है, तो बाहर आने के बाद बच्चा एक बहुत बड़ा एक सात्विक बच्चा बनता है, भगवान की भक्ति में बहुत रुचि होता है उसको है। हमने देखा है छोटा बच्चा, 6 महीने का 3 महीने का बच्चा, ऐसे उनके घर में भगवान का फोटो है, उसके सामने जाकर बैठता है, ऐसे आंख बंद कर हाथ जोड़ता है, तो कैसे आता है ये सब संस्कार आता है, क्योंकि उसको सही समय में कुछ आध्यात्मिक पोषण मिला है उनको है। ये पहला चीज है स्पिरिचुअल केयर। दूसरा है अभी इमोशनल केयर। अभी आप लोग जानते हैं जो तुलसी महारानी है, उनको हम सूर्य में भी थोड़े समय के लिए रखते हैं, उसके बाद थोड़ा छाया में भी रखते हैं, क्योंकि अगर सूर्य में हमेशा आपने रख दिया और बहुत धूप कड़ी होता है तो वो पौधा सूख जाता है। इस तरह एक व्यक्ति वैष्णव जो भक्ति में आगे बढ़ना हो, उनको थोड़ा व्हाट इज ए वार्म्थ इन हिंदी, वार्म्थ नॉट हीट, वार्म्थ गर्मी नहीं है, वो गर्म ने, गर्म का मतलब है हॉट है। देखिए ये वार्म्थ का मतलब क्या है, एक प्रेम, एक एक व्यक्ति को अगर जैसे माता पिता से बच्चे को प्रेम मिलता है, भाई बहन से प्रेम मिलता है, हाँ उष्णता आया, तो पौधों को उष्णता चाहिए लेकिन धूप ज्यादा कड़ी नहीं चाहिए, दोनों चाहिए। इसका मतलब है हर एक व्यक्ति को इधर बताया जा रहा है कि सूर्य के किरणों के बिना सब पत्ते सूख जाएंगे, लेकिन सूर्य के किरणें पड़े उनके ऊपर पड़ेंगे तब वो उसमें हरियाली छा जाते हैं उसमें, ऐसे बताते हैं। तो इस तरह जब किसी में सत्व गुण आ जाता है उसके कारण उसके सब इंद्रिय एकदम सुख का अनुभव करते हैं। जैसे अगर मैं मुंह से शाकाहारी भोजन भगवान को भोग चढ़ाकर खाता हूँ, दूध पीता हूँ, तो ये सात्विक आहार हो गया। आंखों से अच्छे चीज़ों को देखता हूँ, बुरे चीज़ों को नकारता हूँ, ऐसे कानों से कुछ हिंदुस्तानी कर्नाटिक भगवान की कुछ कीर्तन ऐसे सुनते हैं, हर एक इंद्रियों को हम पवित्र कर सकते हैं। उसमें सत्व गुण है, विशुद्ध सत्व है, दोनों बताते हैं कि इस तरह एक व्यक्ति के जीवन में लास्ट लाइन पढ़िए, वी हैव चोजन सनलाइट रिप्रेजेंट इमोशनल केयर बिकॉज कलर्स एंड फ्लेवर्स आर ऑफन कंपेयर्ड इन द शास्त्र टू मोड ऑफ मूड्स एंड इमोशंस। बताते हैं कि हमारे भावना, हमारे जो इमोशन जो होता है, इमोशन का मतलब है व्हाट इज इमोशन हिंदी, भाव, हमारे भाव जो होता है वो अगर हम सत्व गुण में हैं तो तो सतगुण में एक व्यक्ति शांत होता है, वो उसके अंदर स्थैर्यता आ जाता है, बैलेंस आ जाता है, संतुलन आ जाता है सब चीजों में, वो बहुत आराम से भक्ति में आगे बढ़ सकता है उसको। तो इसलिए हरेक व्यक्ति को अगर सत्वगुण में लाना हो उसके लिए उनको ऐसे सपोर्ट की जरूरत है, ऐसे लोगों की प्रशिक्षा, ऐसे लोगों की मैत्री, इसके द्वारा वो उनमें ऐसी तरह का भावना आता है। तीसरा है फर्टिलाइजर दिखाया गया है इधर। फर्टिलाइजर क्या है, क्योंकि एक बच्चा अगर जन्म लेता है एक स्थान में, वो किस किस के साथ ये करता है, व्यवहार करता है, पहले तो माता है, उसके बाद पिता है। कभी कभी माता भक्तिमान होती है, पिताजी शराबी होता है, तो बच्चे दोनों पकड़ लेता है, थोड़ा अच्छाई भी थोड़ा बुराई भी ऐसे। लेकिन माँ बाप अगर दोनों अच्छा है तो बच्चा क्या करता है, पड़ोस के घर में जाता है, टीवी देखता है, तो निकट के लोगों का भी असर पड़ता है, स्कूल में जाता है, टीचर की व्यवहार चरित्र वो भी असर पड़ता है बच्चों के ऊपर, मित्रों की मित्रों का चरित्र, टीचरों का, पड़ोस लोगों का, माता पिता का, मामा मामी, काका काकी, दादा दादी, इन लोगों का भी असर, वो लोग इसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, वो फर्टिलाइजर है। जैसे गांव में गोबर डालते हैं फर्टिलाइजर के लिए तो पौधा बहुत अच्छा बढ़ता है, इसके विरुद्ध अगर आप कोई केमिकल फर्टिलाइजर डालेंगे तो पौधा केमिकल के साथ बढ़ता है, उसको खाने वालों को व्याधि होता है, राइट है ना। इस तरह से समाज में उनको जो एम्बियंस दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, एम्बियंस, वातावरण, पर्यावरण, वातावरण, वातावरण बोलते हैं, तो वातावरण जो उनको मिलता है उसका असर पड़ता है, वो सोशल कह रहे हैं। लेकिन एक भक्त को उसके जैसे अभी बरसाना में है, गोलक वृंदावन में निकट हमारे एनबीसीसी में, तो अनेक भक्त हैं, भक्त ऐसे ही भाग भी जाएगा निकट किसी के घर में, उधर भी आरती हो रहा है, किसी के घर में कीर्तन हो रहा है, तो बहुत मैंने देखा है कैसे भक्त लोग एक दूसरे के घर में आते हैं, कीर्तन करते हैं, कुछ लोग छप्पन भोग बनाते हैं, बाकी लोग जुड़ जाते हैं, बहुत अच्छा सुंदर वातावरण है ऐसे। तो उनको वातावरण अच्छा होने के कारण बच्चों बच्चों को सोशल केयर अच्छा मिल रहा है, करेक्ट है ना। कभी कभी होम स्कूलिंग करते हैं बच्चों को, क्या करते हैं ऐसे 10-15 बच्चों को, 10-15 माता पिता अलग अलग इनपुट देकर उनको स्कूल चलाते हैं, सब भक्त ही भक्त हैं सर, ऐसे चलाते हैं। इस तरह बच्चों को एक प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट मिल जाता है ताकि बाहर की दुनिया में जाकर बिगड़ नहीं जाएंगे। जैसे मैंने सुना दक्षिण भारत में एक स्कूल में एक टीचर है स्कूल के, वो स्टेज में नाच रही है, और प्रिंसिपल फोटो निकाल रहे हैं उसका, उसका ऐसे है वो ठीक तरह से कपड़ा नहीं पहना है, वो नाच रहे, तो बच्चे इसको देखेंगे तो क्या करेंगे वो, अगर स्कूल में इस तरह का शिक्षा उनको मिलता है तो, तो स्कूल में बच्चे जाते हैं देखते हैं कि क्या क्या चल रहा है उधर, तो इसलिए टीचरों का, पड़ोस के लोगों का, माता पिता का, मित्रों का असर, इसको वो सोशल बोलते हैं। तो अभी तक जो बताया मैंने, इमोशनल केयर, सोशल केयर, जो दोनों बताया, इसमें अनेक चीज़ हैं। इसमें बच्चा अगर मन खोल कर सीखना जानता हो, किसी को अकाउंटेबल होता, अकाउंटेबल का मतलब है माता पिता के मार्गदर्शन में समर्पित हो अगर कोई बच्चा, और माता पिता भी एक आदर्श उदाहरण दिखाते हो, और माता पिता भी बच्चे के व्यक्तित्व को समझ कर उसकी उसको अच्छी तरीके से बढ़ाते हो, और सुनना समझना बोलने के पहले, तो इस तरह की अच्छी आदत हो, इस तरह दूसरों को कंसल्ट करने का, तो अनेक अच्छे अच्छे चीज़ दिए गए हैं इधर। तो अच्छाई देखना, बुराई को नकार देना, तो सब चीज़ जो भी हमें घर में प्राप्त होते हैं उनको दूसरों को देना, अगर कुछ खाने के लिए मिला तो दूसरों को भी वो प्रसाद देना चाहिए, हमने अच्छा नोट्स बनाया तो दूसरों को नोट्स दे सकते हैं। तो इस तरह हमेशा बांटने की आदत, जैसे रामानुजाचार्य ने महा एक मंत्र को दिया लोगों को वैकुंठ जाने के लिए ऐसे, तो इस तरह से विश्वसनीय बनना और दूसरों में विश्वास रखना इत्यादि, तो अनेक बताया गया है इधर। इस तरह की एक चरित्रवान जीवन एक बच्चे को मिलेगा तो उसके असर से वो आध्यात्मिक जीवन में स्थित हो सकता है। लास्टली फिजिकल केयर बताया गया है, वो क्या है, मिट्टी है। अभी मिट्टी के बिना वो पौधा जो है क्या टिक भी नहीं सकता है ना, क्योंकि कैसे खड़ा रहेगा वो। इसलिए हमको तंदुरुस्त शरीर चाहिए। अगर हम भोजन खाते हैं, भोजन पचना चाहिए और शरीर तंदुरुस्त होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हर दो दिन बुखार गिर जाता है, उसको मलेरिया आता है, बुखार आ जाता है, कमजोर पड़ जाता है, सुबह उठ नहीं पाता है, वाणी कार्यक्रम में आ नहीं पाता, बोलता है कि तबीयत ठीक नहीं, तबीयत ठीक, तबीयत ठीक नहीं, तो अगर तबीयत ठीक नहीं तो वो आध्यात्म में बढ़ने में भी उसको समस्या होगा। क्योंकि शरीरम खलु धर्म साधनम, शरीर भी एक धर्म साधन है, इसलिए शरीर को भी तंदुरुस्त रखना चाहिए। प्रभुपाद जी वही बोलते हैं कि प्रभुपाद जी हमेशा लिखते थे लेटर में, होप दिस विल फाइंड यू इन गुड हेल्थ एंड राइट कृष्णा कॉन्शियसनेस, तुम्हारी तंदुरुस्त ठीक होना चाहिए और साथ साथ कृष्ण भावना प्रभावित भी तुमको होना चाहिए। क्योंकि शास्त्र बताते हैं कि शरीर एक गाड़ी है, अभी गाड़ी को ठीक रखना चाहिए ना। अगर आपको काम करना हो, कंपनी का काम, तो गाड़ी में पानी डालना चाहिए, रेडिएटर में पेट्रोल डालना चाहिए, हवा डालना चाहिए टायर में, उसको साफ सुथरा रखना चाहिए। अगर कुछ टूट गया, पहिया टूट गया तो रिपेयर करना चाहिए, सब करना चाहिए ना, रेडी रखो। तो अगर रेडी हो गया तो उसके बाद गाड़ी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। उसके बाद गाड़ी ठीक हो गया ना, अभी सोचना बिजनेस के बारे में सोचना चाहिए। अभी मनुष्य जीवन में बिजनेस क्या है, कृष्ण भावना प्रभावित हो जाना। इसलिए शरीर को तंदुरुस्त रखो। प्रभुपाद जी भी मसाज लिया, ऑयल मसाज, और सुबह वॉकिंग के लिए जाते थे, अपने शरीर को तंदुरुस्त रखा तो पूरा दिन ऐसे अपने शरीर में शक्ति को जलाते थे पूरा दिन रात। आप जानते हो सुबह उठते थे वो 1 बजे उठते थे, 4-5 घंटे ट्रांसलेशन करते थे ऐसे, तो अच्छा देखभाल भी करते थे अपने शरीर को और पूरा भगवान के चरण में न्यौछावर कर दिया। ये बुद्धिमता है। तो इस तरह से हम तो मिट्टी जो होता है उससे ये पौधा जो है अच्छी तरीके से टिका रहेगा वो। तो ये सब होने के बाद क्या है, कुंपन लगाते हैं, कुंपन लगाते हैं ना। कुंपन लगाने से क्या है, बकरा आकर मुंह नहीं डालेगा ये तुलसी के ऊपर, है ना। तो कभी कभी हाथी जो है वो आकर ध्वंस नहीं करेगा पौधे को, क्योंकि कुंपन लगा दिया है आपने। तो इसी तरह हम क्या, कुंपन क्या है, उधर बताया गया है चैतन्य चरितामृत में, दो चीज है कुंपन। एक है 4 विधि विधान, जो मांस नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना, अवैध संग नहीं, नशा नहीं, ये 4 वो कुंपन है। और दूसरा कुंपन क्या है, शुद्ध भक्तों का एक सर्कल, हमारे शुद्ध भक्तों के आश्रय लेना चाहिए, उनके वाणी का आश्रय लेकर। तो वो हमको कुंपन देंगे, वो सिखाएंगे हमको लक्ष्मण रेखा क्या है, क्या नहीं करना चाहिए है? उनसे सुनकर सीखकर अपने जीवन में लागू करके एक व्यक्ति की भक्ति लता अच्छी तरह बढ़ सकता है। अभी तात्पर्य को पढ़ेंगे, अभी बढ़िए आगे।
निसंदेह पितृलोक में भेजे जाने की कामना के पीछे महाराज अग्निधर की मनोवृत्ति शूद्र किसी नहीं थी, वे क्षत्रिय थे। महाराज अग्निधर की इच्छा थी कि वे पितृलोक जाएं, इसलिए उन्हें पत्नी की आवश्यकता हुई, क्योंकि पितृलोक के इच्छुक पुरुष को अपने पीछे उत्तम पुत्र छोड़ना चाहिए, जो प्रतिवर्ष भगवान विष्णु से प्रसाद या पिंड उसे प्रदान करता रहे। उत्तम पुत्र पाने के लिए ही महाराज अग्निधर ने देवकुल की पत्नी चाही थी, अतः वे ब्रह्मा के आराधना हेतु मंदराचल चले गए, जहाँ सामान्य रूप से देवों की स्त्रियाँ आती हैं। भगवद्गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 12 में कहा गया है,
कांक्षन्त कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः।
जो भौतिकवादी इस संसार में शीघ्र फल चाहते हैं वे देवताओं की पूजा करते हैं, इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत से भी होती है।
श्री ऐश्वर्य प्रजेप सवः।
जो पुरुष सुंदर पत्नी, प्रचुर धन तथा अनेक पुत्रों की कामना करते हैं वे देवताओं को पूजते हैं, किंतु बुद्धिमान भक्त जो इस सब की कामना नहीं करता वह भगवान के धाम को तुरंत वापस जाना चाहता है, इस प्रकार वह भगवान विष्णु की उपासना करता है।
तो ये किसी काम ने सीख लिया इस तात्पर्य से कि एक व्यक्ति की मति जो होता है पुत्र को पैदा करते समय तो उसका असर पड़ता है बच्चे के ऊपर। तो अभी शास्त्र बताते हैं हम लोग जो प्रचारक बनते हैं, ब्रह्मचारी लोग भी, तो हमारे मति के अनुसार लोग आकर्षित होंगे भक्ति मार्ग में। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, प्रचार काम का मतलब है लोगों को हरिनाम में विश्वास देना, प्रचार का मतलब है लोगों में कृष्ण के ऊपर विश्वास बढ़ाना, प्रचार काम का मतलब है लोगों को भक्ति मार्ग में स्थिर स्थिति में स्थिरता प्रदान करना उनको, और जीवन भर भगवान का नाम लेना, गीता भागवत पढ़ना, भक्ति में जुड़े रहना, ये प्रचार काम है। लेकिन अगर हमारे मति में शुद्ध कृष्ण शिक्षा नहीं हो तो हम ऐसे ही लोगों के को अनुयायी बनेंगे जो भक्ति में गंभीर नहीं रहेंगे। इसलिए हम हर एक भक्त को सोचना चाहिए कि मेरे मति किधर है, क्या मेरे मति में मति क्या कृष्ण के रति जग गया क्या मेरे मति में। अगर इधर रति जग गया तो हम गति भी प्राप्त हो जाता है उसके द्वारा। तो इसलिए मति कृष्ण भक्ति रसभाविता मति क्रियताम अपि कुतो भी लभ्यते तत्र लौल्यम अपि एकल मूल्यम जन्म कोटि सुकृते न लभ्यते। तो हमारे मति जो रसभाविता मति होना चाहिए। अगर हमारा मति रसभावित हो कृष्ण से तो हमारे अनुयायी भी अनेक लोग ऐसे ही गंभीर बनेंगे भक्ति में, जो उनका भी मति कृष्ण भावना भावित होगा। जैसे प्रभुपाद जी का उदाहरण दिया मैंने, प्रभुपाद जी का मति ऐसे था। प्रभुपाद बोले मेरे पांच बेटे थे, हमारी बात नहीं सुना, उनको भक्ति में जोड़ नहीं पाए हम, लेकिन अभी 5000 बच्चे हैं हमारे जो इस्कान में जुड़कर दीक्षा ले रहे हैं और भक्ति में गंभीर पड़ रहे हैं। तो भगवान का आयोजन है, हमको एक छोटे परिवार से निकाल कर बड़े परिवार से जोड़ दिया, ऐसे प्रभुपाद जी ने बोले। इसलिए असली पुत्र शुक्र से पैदा होने वाला पुत्र नहीं है, असली पुत्र श्रवण से पैदा होने वाला। जो शिक्षा गुरु हो, दीक्षा गुरु हो, उनके शिक्षा को अच्छी तरीके से श्रवण करके अपने जीवन में उतार कर चित्त को शुद्ध करके भक्तिमान बनता हो, वही असली शिष्य है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंदा की। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।